नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत, इस पर चर्चा करने वाले हैं।
हाँ, और खास तौर पे इसके एक अध्याय पर।
बिल्कुल। अध्याय का नाम है मार्गदर्शक द्वारा भावी जीवन क्रम संबंधी निर्देश। इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि पूज्य गुरुदेव को उनके जो अदृश्य मार्गदर्शक थे उनसे क्या निर्देश मिले और उनकी आध्यात्मिक यात्रा के कुछ कह सकते हैं गहरे पहलू। ये बात काफी दिलचस्प है ना, कि हम सोचते हैं साधक गुरु को खोजते हैं, पर क्या कभी ये ख्याल आता है कि सिद्ध पुरुषों को भी मतलब योग्य शिष्यों की उतनी ही तलाश रहती है, शायद ज्यादा भी।
हाँ, ये एक अलग नजरिया है। पूज्य गुरुदेव के अनुभव इसी सच्चाई को सामने लाते हैं। बिल्कुल।
चलिए तो फिर इसी मार्गदर्शन की परतों को खोलते हैं। पूज्य गुरुदेव खुद बताते हैं कि सिद्ध पुरुषों को सुपात्र मतलब योग्य साधकों की तलाश ज्यादा रहती है, पर सवाल उठता है ये सुपात्र है कौन।
सही सवाल है। सुपात्र वो जिसका क्या कहते हैं चिंतन, चरित्र और व्यवहार तीनों परिष्कृत हो, मतलब एकदम सधे हुए शुद्ध।
अच्छा।
और कमाल की बात यह है कि ऐसे साधक को फिर गुरु खोजने नहीं जाना पड़ता,
मतलब मार्गदर्शन खुद आता है।
हाँ, मार्गदर्शन स्वयं उन तक पहुंचता है। पूज्य गुरुदेव के साथ भी तो यही हुआ था। उन्हें तो घर बैठे ही मार्गदर्शन मिला और वो 24 साल का जो गहन गायत्री अनुष्ठान था,
महापुरुष शरण जिसे कहते हैं।
हाँ, महापुरुष शरण, वो करवाया गया।
और यही पर एक और मतलब बहुत रोचक बात सामने आती है। उनके मार्गदर्शक ने ये संकेत दिया था कि पूज्य गुरुदेव को भविष्य में 4 बार हिमालय बुलाया जाएगा, एक एक साल के लिए। तो जिज्ञासा होती है कि भाई क्यों, क्या उद्देश्य था इन यात्राओं का।
हाँ, ये सवाल स्वाभाविक है। देखिए, इसके पीछे कारण एक नहीं कई थे, गहरे कारण थे। पहला तो ये परखना था कि साधक में एकाकीपन मतलब अकेलापन और मुश्किल हालात सहने की क्षमता है या नहीं।
अच्छा, क्षमता परखना।
हाँ। दूसरा ये देखना कि उसके अंदर आत्मीयता इतनी बड़ी है या नहीं कि वो निर्जन जंगली इलाके के हिंसक पशुओं से भी डरे नहीं बल्कि एक तरह का मैत्री भाव रख सके।
ये तो बहुत ऊंची अवस्था हुई।
बिल्कुल। और तीसरा जो शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो था उन्हें देवात्मा हिमालय के उस खास क्षेत्र का अनुभव कराना, वो जगह जहां प्राचीन ऋषियों ने तप किया, देवत्व पाया और मानवता के लिए बड़े बड़े असाधारण काम किए।
उनसे सीधा परिचय कराना उन ऊर्जाओं से।
हाँ, उन स्थानों से, उन स्पंदनों से प्रत्यक्ष परिचय।
तो ये सिर्फ तपस्या नहीं थी, ये एक तरह की ट्रेनिंग थी, भविष्य की किसी भूमिका के लिए तैयारी।
हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इसका गहरा मतलब यही था कि भविष्य में पूज्य गुरुदेव को अपने आत्मबल का उपयोग ठीक उन्हीं ऋषियों की तरह उस समय की जो भी समस्याएं होंगी उनके समाधान के लिए करना होगा। ये पुरानी ज्ञान धारा से जुड़ना था।
अच्छा, अब ये तैयारी की बात तो हुई, पर साधन, यहीं पर स्थूल और सूक्ष्म शरीर की बात आती है ना। मार्गदर्शक ने इस पर भी समझाया, ये समझना जरूरी लगता है।
निश्चित रूप से। देखिए, हमारा ये जो स्थूल शरीर है, ये भौतिक शरीर, इसकी अपनी सीमाएं हैं।
हाँ बिल्कुल।
इसे भोजन चाहिए, नींद चाहिए, आराम चाहिए। ये थकता है, बीमार भी पड़ता है और इसकी गति भी सीमित है। हाँ, दुनिया के काम करने, लोगों से मिलने जुलने के लिए ये जरूरी है। एक तरह का हार्डवेयर है ये।
दुनिया में काम करने का हार्डवेयर, और सूक्ष्म शरीर वो कैसे अलग है।
सूक्ष्म शरीर वो इन सब सीमाओं से बिल्कुल परे है। उसे ना सर्दी लगती है, ना गर्मी, ना भूख, ना प्यास, ना थकान,
कुछ नहीं।
नहीं, और उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज। एक दिन में सैकड़ों योजन मतलब बहुत लंबी दूरी तय कर सकता है वो।
अच्छा।
और एक ही समय में हजारों लोगों तक अपना संदेश, अपना प्रभाव पहुंचा सकता है। इससे आप कह सकती हैं आध्यात्मिक काम का उन्नत सॉफ्टवेयर।
वाह, ये तुलना अच्छी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर।
हाँ, इसीलिए ज्यादातर जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो अपने खास काम सूक्ष्म शरीर से ही करते हैं, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर ज्यादा लोगों की मदद संभव हो पाती है। पूज्य गुरुदेव को भी यही बताया गया कि जब इस स्थूल शरीर का काम पूरा हो जाएगा तब उन्हें सूक्ष्म शरीर में जाना होगा, जहां साधना का स्तर अलग होगा, क्षमताएं बिल्कुल भिन्न होंगी। ये एक तरह से आध्यात्मिक विकास का अगला पड़ाव है।
पुस्तक में हिमालय के कुछ गुप्त क्षेत्रों का भी जिक्र आता है,
जैसे
गौमुख से भी आगे का इलाका और हिमालय का हृदय जिसे अध्यात्म का ध्रुव केंद्र कहा गया है।
हाँ बिल्कुल।
पूज्य गुरुदेव को वहाँ ले जाकर अनुभव कराने की भी बात थी।
हाँ, ये योजना थी। और साथ ही ये भी बताया गया कि जो सूक्ष्म शरीरधारी सिद्ध पुरुष हैं वो अब ज्यादातर पृथ्वी के स्थूल वातावरण से ऊपर रहते हैं, मतलब अंतरिक्षीय चेतना लोकों में, क्योंकि धरती का जो ये शोर शराबा है, प्रदूषण है, ये उनके लिए अब अनुकूल नहीं रहा।
अच्छा, ये बात तो थियोसॉफी की संस्थापक मैडम ब्लावेट्स्की की बातों से भी मिलती है। उन्होंने भी हिमालय में अदृश्य सिद्ध पुरुषों की पार्लियामेंट और अदृश्य सहायकों की बात कही थी।
हाँ, ये वही बात है। और पूज्य गुरुदेव को ये आश्वासन मिला था कि वो अपने मार्गदर्शक की कृपा से, अपने विकसित दिव्य दृष्टि से इन सबको अनुभव कर सकेंगे। ये वाकई हिमालय के अनदेखे रहस्यों की तरफ एक इशारा है। वो था केवल बुलावे की प्रतीक्षा करना।
अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं, कोई इच्छा नहीं।
बिल्कुल नहीं। साफ कहा गया कि जब समर्पण कर दिया तो अब जिम्मेदारी मार्गदर्शक की है, बुलावे का इंतजार करो।
ये तो विश्वास और धैर्य की पराकाष्ठा है, मतलब पूरी तरह छोड़ देना।
हाँ, यही तो समर्पण का असली मतलब है। तो आज हमने पूज्य गुरुदेव के अनुभवों से ये समझा कि कैसे सच्चे साधक को मार्गदर्शन खुद मिलता है ना?
हाँ।
हिमालय यात्राओं के पीछे की क्या क्या उद्देश्य थे, स्थूल और सूक्ष्म शरीर की कार्य प्रणाली और क्षमताओं में कितना बड़ा अंतर है, और हिमालय के उन अदृश्य आध्यात्मिक रहस्यों की एक झलक भी मिली।
पूज्य गुरुदेव के ये अनुभव हमें समर्पण इस एक शब्द पर बहुत गहराई से सोचने को मजबूर करते हैं। आज के समय में जहां शायद हमें वैसा सीधा दैवीय मार्गदर्शन न मिले,
हाँ ये मुश्किल है,
तो एक आम इंसान के जीवन में उसकी अपनी साधना में समर्पण का असली मतलब क्या हो सकता है, इसका अभ्यास कैसे किया जा सकता है, ये सवाल काफी विचारणीय है मुझे लगता है।
बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए।